विद्यार्थियों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम तुलसीदास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षार्थियों, तुलसीदास जी पर बातचीत करते हैं हम। आप सभी ने रामचरितमानस का नाम जरूर सुना होगा। यह एक ऐसा महाकाव्य है जो विश्व प्रसिद्ध है और पूरे विश्व में इसकी ख्याति है। इस रामचरितमानस के कारण भारत देश की गरिमा है, महत्ता है पूरे विश्व में। और तुलसीदास ने इसमें नाना पुराण सबको इसमें सम्मिलित किया है और इसमें जिस तरह से आदर्शों की स्थापना की गई है वह वास्तव में अनोखा है, अद्भुत है। रामचरितमानस हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और गांवों में आज भी आप देखेंगे तो उसका पाठ किया जाता है
जी सर।
उसका कारण यह है कि यह केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है बल्कि इसमें मानव जीवन के हर पक्ष का उद्घाटन किया गया है और तुलसीदास ने अलग अलग चरित्रों के माध्यम से इस मानवीय चेतना को जगाने की कोशिश की है।
जी सर।
एक छोटा हिस्सा आपके पाठ में रखा गया है, वह है भरत का भ्रातृ प्रेम। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे।
जी।
किसी भी रचना को समझने के लिए रचनाकार को जानना बहुत जरूरी है। रचनाकार की पृष्ठभूमि क्या है, काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं, यह सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि रचनाकार अपने चिंतन और भावनाओं के अनुसार अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है। तुलसीदास जी के बारे में अगर कहें तो 1532 ईस्वी में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सोरो नामक ग्राम में हुआ था और कहा जाता है कि उनका बचपन बहुत ही कष्ट में बीता। बाबा नरहरि दास के वे शिष्य थे और उन्होंने अनेक रचनाओं की सृष्टि की लेकिन 12 रचनाओं को उत्कृष्ट माना जाता है और जिसके कारण तुलसीदास की प्रतिष्ठा हुई, जिनमें रामचरितमानस के अलावा दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि कई रचनाएं हैं। और शिक्षार्थियों, आपको जानना चाहिए कि तुलसीदास में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उनको उत्कृष्ट बनाती हैं। तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने राम कथा के जो विविध प्रसंग थे उनके माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने रखा।
जी सर।
और दूसरी बात यह है कि तुलसी की जो भक्ति है वह सीधी है, सरल है
जी,
और सभी लोगों के लिए उपयोगी है।
जी सर।
तीसरी बात अगर कहें तो उनमें वैष्णव और शैव इन दोनों के बीच जो उस समय विरोध था उन्होंने समन्वय स्थापित किया। अगर शिल्पगत विशेषता की बात करें तो उनमें शिल्प की विविधता नजर आती है, कवित्त, सवैया, दोहा आदि विभिन्न छंद की पद्धतियां आपको उनमें नजर आएंगी। उसी तरह से अगर भाषा के आधार पर देखा जाए तो अवधी और ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार रहा है। रामचरितमानस का यह जो प्रसंग लिया गया है पाठ में आपके, यह अवधी में लिखा गया है।
जी सर।
शिक्षार्थियों, आपको अवधी समझने में थोड़ी मुश्किल भी होगी क्योंकि यह एक बोली है और इसमें जो शब्दों का विधान होता है वह खड़ी बोली हिंदी से अलग होता है। तो मैं चाहूंगा कि अभी जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे
जी,
तो इसको ध्यान से सुने, इसकी मुख्य विशेषताओं को हृदयंगम करें और इस चर्चा के बाद बाद में चलकर आप अध्ययन सामग्री को पढ़ें और अच्छी तरह से समझें, हर शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं इसके मूल पाठ को पढ़ता हूं, उसके बाद प्रसंग, अर्थ और व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं बिचारू, पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एहिते अधिक कहो मैं काहा, मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर को हन काऊ, मुँह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिसन कबहू देखी, शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावहि मोही, बहु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपितन आज लगी प्रेम पियासे नैन। ये देखिए, एक दोहा पूरा आपके सामने मैंने पढ़ा और इस दोहे का संदर्भ आप जरूर समझें, क्योंकि देखिए रामचरितमानस का अगर एक हिस्सा लिया गया है तो उसके उसकी पृष्ठभूमि क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे राम वन गमन के बाद का प्रसंग है। आप जानते हैं कि सीता और लक्ष्मण राम के साथ वन में जाते हैं और अयोध्या के लोग बहुत दुखी होते हैं, और राम के छोटे भाई भरत जब ननिहाल से लौट कर आते हैं तो उन्हें अत्यंत पीड़ा होती है और वे अपनी माँ को ही इस सारे कार्यों के लिए, राम वन गमन के लिए या दशरथ के मरण के लिए जिम्मेदार मानते हैं, और उनकी माँ कैके ही चाहती थी कि भरत का राज्याभिषेक हो, लेकिन भरत ने राजगद्दी नहीं ली और वे अपने बड़े भाई राम को मनाने चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े, और उनके साथ गुरु वशिष्ठ और पूरा राज परिवार, अयोध्या के नागरिक सभी लोग थे।
जी
यहाँ पे प्रसंग उसी समय का है जब चित्रकूट में भरत पहुंचते हैं और वहां राम लक्ष्मण और सीता बैठे हैं, और वहां पे सभा आयोजित की जाती है ताकि
जी
सब लोग श्री रामचंद्र जी से अनुरोध कर सकें कि वे अयोध्या वापस चलें। तो
जी
वहां
सर
पे सभी लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब भरत अपनी बात कहना चाहते हैं और मुनि वशिष्ठ उन्हें आदेश देते हैं कि आप अपनी बात रखिए। तो
जी सर
भरत यह देखते हैं कि पूरा वातावरण अनुकूल है और वे अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं। उनका शरीर पुलकित होता है, उनके कमल के समान नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है, और वे कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने पहले ही कह दिया है, इसलिए अधिक कुछ कहने को नहीं है मेरे पास। वे कहते हैं कि मैं अपने राम का स्वभाव जानता हूं, वे कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है,
जी सर
विशेष स्नेह है।
जी
वे और तर्क देते हैं, वे कहते हैं कि मैंने खेल में भी कभी उनकी नाराजगी नहीं देखी, बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा।
जी
वो कहते हैं कि मैंने प्रभु की कृपा करने की रीति को हृदय से महसूस किया है, अनुभव किया है, कई बार तो मेरे हारने पर भी खेल में वे मुझे जिता देते थे,
जी
और मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। और प्रेम के जो प्यासे मेरे नैन हैं, आज भी प्रभु राम के दर्शन करके तृप्त नहीं हो रहे हैं। अर्थात मैं प्रभु के प्रेम से भरा पड़ा हूँ, अर्थात प्रेम से विह्वल हो रहा हूँ और अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने भाई के प्रति मेरे मन में किसी तरह का विरोध नहीं है, और जो भी घटनाएं हुई हैं, मैं चाहता हूं कि उसे भूलकर हमारे भाई, हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी वापस लौट जाएं। तो
जी
यहाँ देखिए कि भरत के स्वभाव का कितना सुंदर चित्रण है,
बिल्कुल सर
और वे बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ अपनी बात को कहते हैं। और यह भी इस प्रसंग में आपको दिखाई दिया होगा कि उन्हें लगता है कि अपने बड़े भाई के स्वभाव के बारे में क्या कहें,
जी
उनमें इतना अधिक बड़प्पन है, उनमें उनकी विशेष कृपा रही है, इतना स्नेह रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। और देखिए वो बचपन का उदाहरण भी देते हैं कि बचपन में मैं जब हार जाता था तो श्री रामचंद्र जी मुझे जिता देते थे। यह देखने में छोटी घटना है, लेकिन इसके पीछे का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए जब भरत अपनी बात कहते हैं
जी
तो उसका दो अर्थ निकलता है। एक अर्थ तो यह निकलता है कि मैंने बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा, और जब इतने लंबे समय तक मैं उनके साथ रहा हूं तो उनका वियोग कैसे कह सकता हूं, ये तर्क दे रहे हैं अपना। और दूसरा तर्क वे देते हैं कि रामचंद्र जी ने कभी भी मेरा दिल नहीं दुखाया, तो
जी
इसलिए आज भी मुझे यह विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर अयोध्या वापस चलेंगे।
जी
तो यह देखिए कि किस तरह से बड़े सहज तरीके से, भावुक तरीके से भरत राम के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। और भारतीय परंपरा को भी अगर शिक्षार्थी आप देखें तो यहाँ शिष्टाचार की बड़ी परंपरा रही है, बड़ों के प्रति हमेशा आदर रहता है, और बड़ी शालीनता से हमारे समाज में बड़ों से बात की जाती है, और उसी का दर्शन यहाँ भी तुलसीदास ने कराया है। दूसरे अंश को देख लेते हैं। विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा, यहउ कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोभा, मातु मंदि मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, परई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपने हूँ दोष कलेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारिउ जाय जननी कहि काकू, हृदय हे रिहा रेहु सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा संदर्भ अलग है। ऊपर आपने देखा कि राम के प्रति भरत का अगाध प्रेम है, और वे बार बार अपने प्रेम को याद कर रहे हैं, और दूसरी ओर वे अपनी माता की जो करनी थी, माता ने जो कार्य किया कि भरत को राजगद्दी दी जाए और राम को वनवास, इससे वे बड़े क्षुब्ध होते हैं। उनके मन में कचोट होता है, पीड़ा होती है, आत्मग्लानि होती है, और उसी मनोदशा को तुलसीदास ने यहाँ पे बड़े सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है। इसके अर्थ को देख लेते हैं हम पहले। यहाँ भरत कहते हैं कि विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। वे उदाहरण भी देते हैं, वे कहते हैं कि क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष देने का लेश भी नहीं है। वे कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है, और मेरा दुर्भाग्य अथाह समुद्र के समान है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया कि मेरी भलाई किसमें है। और गुरु महाराज हमारे सर्वसमर्थ हैं, राम जी मेरे स्वामी हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि परिणाम अच्छा होगा। साधुओं की सभा में गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, या प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक ओर वो अपनी माता को कोसते हैं कि उन्होंने गलत काम किया, फिर वो कहते हैं कि मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं माँ को दोषी ठहराऊं, और फिर अंत में ये कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ सर्व ज्ञानी हैं और हमारे प्रभु श्री राम अंतर्यामी हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि परिणाम अच्छा आएगा। तो यह पूरा देखिए प्रसंग वहीं का चित्रकूट का है, और यहाँ राम और भरत के बीच जो स्नेह टूटा उसका कारण कैकेयी बनी। उन्होंने ही इस तरह की का प्रण लिया कि दोनों भाइयों में दूरी आ गई। लेकिन भरत कहते हैं कि मैं क्या कर सकता था, यह तो हमारे भाग्य का ही खेल था, मेरा दुर्भाग्य आगे आगे चल रहा था। और वे कहते हैं कि उदाहरण देते हैं कि क्या कोदो के पौधे से शालिधान की बालें उगेंगी। इसको दूसरी कहावत से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं कि बबूल के पेड़ पर क्या आम उग सकता है। कहना वो ये चाहते हैं कि जब माँ में ही दोष है तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूँ। भरत और भी आगे कहते हैं कि मैंने अपने गुस्से में दुर्भावनावश माँ को कुछ भी गलत कह दिया हो तो मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और मैं यह देखता हूँ कि यहाँ गुरु वशिष्ठ हमारे बड़े ही पूज्य हैं और हमारे राम बहुत ही हमारे प्रिय हैं, स्नेही हैं। इन दोनों की निकटता में और साधु समाज के बीच में कोई न कोई अच्छा निर्णय होगा, यह मेरा विश्वास है। अब आप देखें कि इन पंक्तियों में जब विशेष अर्थ हम खोजने लगते हैं
जी,
तो हमें काव्य कला की वानगी नजर आती है। जब तुलसीदास कहते हैं कि नीरज नयन नेह जल बाढ़े, तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से रूपक अलंकार की छटा दिखाई देती है। यहाँ पर आंखों की उपमा कमल से दी गई है। तो नीरज नयन में उपालंकार और नेह जल में रूपक अलंकार, दोनों का समन्वय आपको यहाँ दिखाई देगा। उसी तरह से आप अगर आप देखें तो इसमें विनम्र शैली में बोलने की समझदारी भी आपको यहाँ दिखाई देगी। जब भरत कहते हैं कि मैं जानो निज साथ नाथ सुभाऊ, अपरा देव पर को हनकाऊ, मोह पर कृपा स्नेह विषेकी। अब अपनी बात कितनी अच्छी तरह से वे कहते हैं कि मैं राम के स्वभाव को जानता हूँ और भाई भाई के बीच भी बड़े भाई को वे स्वामी मानते हैं और इसीलिए वे कहते हैं कि मैंने अपराध भी किया हो तो हमें क्षमा कर देंगे। और वे यह भी तर्क देते हैं कि हमारे प्रभु ने हमेशा मुझे क्षमा किया है और मेरी गलतियों को एक तरह से नकार दिया है, इसलिए मैं मुझे अभी भी विश्वास है कि रामचंद्र जी हमें माफ कर देंगे और वापस अयोध्या चलेंगे। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि अलंकारों के साथ साथ एक नादात्मक सौंदर्य भी आपको यहाँ दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि वर्णों की ऐसी व्यवस्था की जाती है कि संगीत पैदा होता है, जैसे सुनिमुनि वचन राम रुख पाई। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ नादात्मक सौंदर्य है। उसके अलावा ये भाषा जो है शिक्षार्थियों अवधि भाषा है
जी
और बड़ी ही प्रांजल अवधि भाषा आपको यहाँ दिखाई देगी। अगर छंद की बात करें तो दोहा चौपाई छंद है यहाँ, और इसमें तुलसीदास ने एक तरह से आप कहें तो भरत के प्रेम को भी दिखाया, रामचंद्र जी के प्रति आदर भी दिखाया, गुरु के प्रति आदर दिखाया है, और उसके अलावा कुल मिलाकर रामचंद्र जी के आदर्श रूप को भी प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ पर विस्तार से बातचीत की है और मुझे लगता है कि अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इसके अर्थ को भी समझेंगे। कहीं कहीं आपको कठिन शब्द नजर आएंगे लेकिन उसके अर्थ भी आपको पुस्तक में आपके दिए गए हैं। इसमें एक दो बातें और बताना चाहूंगा मैं कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जो परीक्षाओं में, वे प्रश्न होते हैं कि आप इसके मूल तथ्य को बताएं या इसकी व्याख्या करें या काव्य सौंदर्य बताएं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आप इसके अर्थ को समझें, क्योंकि जब आप व्याख्या करेंगे तो अर्थ जानना जरूरी है, काव्य सौंदर्य में भी भाव पक्ष और कला पक्ष को जानना जरूरी है, और जो बोध प्रश्न आते हैं वे इसी पर आधारित होते हैं। जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि भरत ने माँ के प्रति इतना आक्रोश क्यों व्यक्त किया, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि क्योंकि राम और भरत के प्रेम के बीच माँ आड़े आ रही थी, इसीलिए भरत ने आक्रोश व्यक्त किया है। तो इस तरह से आप वो प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। केंद्रीय भाव इस पाठ का आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें राम और भरत के अनन्य प्रेम का वर्णन है और भाई भाई के बीच जो एक आदर्श संबंध होता है उसका निरूपण यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से हमने इस पाठ को यहाँ पे देखा और समझा
जी,
और तुलसीदास के बारे में हमने एक पूरी उसकी रूपरेखा समझने की कोशिश की। आशा है आपको इससे लाभ हुआ होगा।